ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी चिकित्सक यहाँ पहुँचे हैं, तो मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। परमात्मा के घर में आप पहुँचे हैं, अपने ही घर में पहुँचे हैं। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम सर्जन परमात्मा है जो हम आत्माओं की चिकित्सा करते हैं। तो आपकी कॉन्फ्रेंस का नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन। तो हम सब ने हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा बहुत कुछ सुना और उससे ये तो समझ ही गए होंगे कि शरीर के उपचार से पहले मन का उपचार करना जरूरी है, क्योंकि 80% शरीर के रोगों का कारण मन है। और अगर मन को आपने सही दिशा दी, मन में सही विचार लाए, तो 80% शरीर के रोगों का आना ही नहीं होगा, आएंगे ही नहीं, बाकी 20% और कई कारण होंगे। तो जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस है, वो साइको को ठीक किया तो सोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मन की चिकित्सा करने लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो मेरा विषय है पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बट बिफोर सेल्फ रियलाइजेशन देयर इज नीड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। रियलाइजेशन भी तब होगा जब पहले अवेयरनेस होगा, और अवेयरनेस और रियलाइजेशन के बीच में आता है सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, अपने श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में चिंतन करना। तो हम उसकी सीक्वेंस बताते हैं। पहले तो चाहिए आत्मज्ञान, फिर चाहिए आत्म चिंतन, फिर चाहिए आत्मनिरीक्षण, फिर चाहिए आत्मविश्लेषण, फिर चाहिए आत्मसंयम, और फिर होगा आत्मबोध, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और उस सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, जैसे बताया, पहले सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं इस जगत में, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहां जाना है। और जो सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं, और ये प्रश्न सदियों से चलता आ रहा है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, उन्होंने भी यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो यहां आपको ये समझ मिली कि आप कौन हैं, आप ये देह नहीं है, लेकिन इस देह के अंदर विराजमान एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा है। इसलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन पार्ट तो शरीर का पार्ट है, लेकिन जो बीइंग पार्ट है वो मैं हूं। इसलिए हमें अपनी भाषा को भी कई बार करेक्शन करनी पड़ती है, करना पड़ेगा। कई कहते हैं मेरे अंदर एक आत्मा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, मेरे अंदर एक आत्मा है। फिर दूसरा वाक्य है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब मेरे शरीर में मेरी आत्मा है इसका मतलब शरीर भी मेरा आत्मा भी मेरी, तो फिर मैं कौन? मेरे अंदर एक आत्मा है माना मैं शरीर और मेरे अंदर आत्मा है। मेरे शरीर में मेरी आत्मा है का मतलब मैं कोई तीसरी चीज हूं क्या? है ही दो चीजें, आत्मा और शरीर। और तीसरा वाक्य है मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं, मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं। तो कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है, पहला दूसरा या तीसरा? समझ गए ना? तो तीसरा वाक्य सही है, अर्थात मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं। तो वास्तव में आत्मा है क्या चीज? जब हम मन शब्द कहते हैं तो मन ये शरीर की चीज नहीं है। किसी भी न्यूरो सर्जन ने मन की बात नहीं की है, दिल की बात तो करते हैं हार्ट, पर मन को किसने देखा? चाहे ब्रेन सर्जन ऑपरेशंस करते हैं, ट्यूमर्स निकालते हैं, पर क्या मन को देखा है? बाकी तो सब ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको तो हम देख सकते हैं, पर मन को किसने देखा है? मन वास्तव में ब्रेन की चीज नहीं है, मन आत्मा की शक्ति है। मन की स्पीड कितनी है कभी ये सोचा है? अगर मन की स्पीड गिने तो कितनी हो सकती है आपकी इमेजिनेशन से भी परे होगी। क्यों? आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दिया E=mc², Energy=mass×square velocity of light। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वो सबसे ज्यादा है इन एनर्जीज, फिजिकल एनर्जीज। कई एनर्जीज है, साउंड एनर्जी, लाइट है, अन्य एनर्जीज, उसमें लाइट की एनर्जी उसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। और लाइट एनर्जी के लिए कहते हैं जब सूरज से पहली किरण निकलती है वो किरण धरती तक पहुंचती है उसको 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट ऐसे विज्ञान कहता है। तो 8 मिनट लगते हैं सूरज की किरण को धरती तक पहुंचने में, लेकिन मन से सूरज तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? क्या मन की स्पीड आप गिनती कर सकते हैं? 1 सेकेंड। अभी जो भी हम रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं मेडिटेशन के अंदर, ये मन की स्पीड की टेस्ट है। 1 सेकेंड में आप अपने घर पहुंच गए, 1 सेकेंड में अपने हॉस्पिटल में पहुंच गए, 1 सेकेंड में आप अपनी ऑफिस में पहुंच गए। 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड से भी कम अगर कहें तो मन की कितनी स्पीड है? तो क्या मन फिजिकल है? नो, माइंड इज स्पिरिचुअल, इज द बीइंग पार्ट. कई मन और दिल को एक समझ लेते हैं. वे दिल में भगवान को रखो. तो दिल कौन सी दिल? हनुमान से पूछा गया कि राम से कितनी प्रीत है, तो दिल चीर के दिखाया, लो राम मेरे दिल में बैठा हुआ है. परंतु अगर ये हृदय को चीर कर दो तो क्या होगा? जिंदा बचेंगे? तो इस हृदय की तो बात ही नहीं है. ये हृदय तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता रहता है, बाईपास सर्जरीज होती है, ओपन हार्ट सर्जरीज होती है. लेकिन दिल में भगवान है, वो कौन सा दिल है? ये दिल तो नहीं है ना, जो हार्ट बीट इको करते हैं तो हार्ट बीट का पता चलता है. तो ये दिल की भेंट किससे करते हैं? मन की भेंट दिल से करते हैं. फिर कहते दिमाग, दिमाग मिलाओ. तो दिमाग माना ये ब्रेन, लेकिन ये ब्रेन तो फिजिकल चीज है. ब्रेन में याददाश्त शक्ति है, वो ग्रे मैटर ब्रेन में है, मेमोरी पावर है. किसकी ज्यादा मेमोरी है, किसकी कम मेमोरी है, कोई जल्दी भूल जाता है, कोई भूलता नहीं है इतना. लेकिन ब्रेन को बुद्धि से भेंट करना ये गलत हो जाएगा. बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, चाहे इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट को विजडम से भेंट करते हैं, ज्ञान से भेंट करते हैं. इंटेलिजेंस इज योर इंटेलेक्ट अर्थात योर विजडम, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. वो कहाँ तक पहुंचे हैं? और इमोशनल फीलिंग्स या इमोशंस, इमोशनल क्वोशन्ट जिसको हम EQ कहते हैं, इट इज मच ग्रेटर देन योर IQ. बट वो इमोशंस को अगर हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उससे हायर क्वोशन्ट है MQ. MQ मीन्स योर मॉरल क्वोशन्ट. तो मॉरल क्वोशन्ट शुड बी हाई. तो मॉरल क्वोशन्ट मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंस टू वैल्यूज. एंड इफ यू हैव वैल्यूज इन योर लाइफ, यू आर वेरी वैल्यूएबल. बट इफ नो वैल्यूज इन लाइफ, देन इवन लाइफ इज वैल्यूलेस. सो लाइफ इज वैल्यूएबल ओनली इफ देर आर वैल्यूज इन लाइफ. और वैल्यूज को हम किससे भेंट करेंगे? जैसे एक तराजू होती है, उस तराजू में नीडल होता है, एंड नीडल शुड बी अपराइट. दैट इज योर माइंड. योर माइंड शुड बी टुवर्ड्स गॉड. इसीलिए गीता में लिखा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम. कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो मन ईश्वर में लगा हो. तन तो आप उपचार करते हैं, किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, उसके रिश्तेदार आपके पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, बचेगा आप, तो वो होप्स दिलाएगा. वो कहेगा, आप चिंता नहीं करो, हम कोशिश कर रहे हैं. आई कैन ओनली ट्रीट बट आई कैन नॉट क्योर. सो क्योर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर, इट इज हिज ओन कर्मा. कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी बीमारी होती है तो भी अचानक हार्ट फेल हो गया, और कोई इतनी सीरियस बीमारी होती है तो भी होप्स आ जाते वापस और वो बच जाता है। तो ये कहते कर्मों का हिसाब किताब है। तो इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट आर क्वाइट डिफरेंट। इंटेलेक्ट इज पार्ट ऑफ द सोल, माइंड इज पार्ट ऑफ द सोल, हार्ट एंड हेड आर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट वी समटाइम्स मिक्स देम अप। तो दिमाग से काम नहीं लेना है लेकिन बुद्धि से काम लेना है, और बुद्धि को हम तराजू से भेंट करते हैं जिसमें जो ऊपर की जो नील है वो परमात्मा को याद करे, मन और बुद्धि साथ में ईश्वर को याद करे, और बुद्धि में जो हॉरिजॉन जो तराजू में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रूलर जैसे, दैट शुड बी स्ट्रेट। स्ट्रेट माना अनबायस्ड, पक्षपात रहित। इसीलिए वकीलों जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां न्याय की देवी बताते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है माना अनबायस्ड, अनबायस्ड है वो, न्यायकारी है। और फिर जो पलड़े हैं वो वैल्यूज है। तो किसको वजन देना है? वैल्यूज को वजन देना है। लेकिन ये वैल्यूज आएंगे कैसे? वैल्यूज आएंगे स्पिरिचुअलिटी से। तो MQ से भी ऊंचा है SQ, और वो एक मिसिंग लिंक है आज संसार में। वी हैव फॉरगॉटन अवर स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो आप कल से आज तक सुन रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में। एंड इफ यू रियलाइज योर स्पिरिचुअल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मा के जो 7 मूल गुण हैं, जिसको हम कहते हैं इननेट क्वालिटीज, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, मंथन करना, उनको इवैल्यूएट करना, उनको अपने अंदर में धारण करके संयमित रहना, ये सब सेल्फ रियलाइजेशन में आता है। तो मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्या हुआ? मैं एक आत्मा हूं इस शरीर में, जो बोलती हूं, सुनती हूं, देखती हूं। ये आंखें तो केवल एक खिड़कियां हैं, ये नहीं देखती है। आंखों खिड़कियों से आप देखते हैं, खिड़कियां तो नहीं देखती, वो तो जड़ चीज है। इन कानों से आप सुनते हैं, ये कान तो हेडफोन्स की तरह है। तो हेडफोन्स नहीं सुनते हैं, पर इन कानों द्वारा सुनने वाली आत्माएं, इन आंखों द्वारा देखने वाली आत्माएं, मैं बोल रही हूं। आप कहेंगे मुख बोल रहा है, पर मुख कैसे बोलेगा, उसे क्या पता क्या बोलना है? जैसे इस माइक्रोफोन को कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, पर माइक्रोफोन के द्वारा बोलने वाली कोई अन्य चीज है। तो इसी प्रकार इस मुख को माइक्रोफोन का रूप देंगे तो इसे बोलने वाली कौन? मैं आत्मा। तो जब हम कोई भी एक्शन करें तो सेल्फ अवेयरनेस से करें। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। तो क्या होगा? आत्म संयम आएगा। ये इंद्रियां मेरे वश में है, मैं इनका मालिक हूं। जैसे ड्राइवर के वश में है गाड़ी, गाड़ी को कैसे चलाए, कितनी स्पीड से चलाए, वो ड्राइवर के हाथ में है। पर ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ होगा तो गाड़ी उस पर ओवर पावर कर लेगी और गाड़ी मालिक बन जाएगी और एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव डोंट गो टुगेदर। तो ड्राइविंग हमारी ऐसी हो जो आई शुड बी द कंट्रोलर ऑफ द कार, not the car be controller of me. तो मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं. इन इंद्रियों के द्वारा मैं जैसे कर्म करना चाहूं मैं कर सकूं. मैंने हाथ उठाकर किसी को थप्पड़ मारी और फिर कहेंगे ओ सॉरी सॉरी, मुझे मारना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं ये कैसे हाथ उठा और आपको थप्पड़ मारे. अब ये हाथ तो मेरा है, ये किसी और का तो नहीं है. क्या हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था? क्या हाथ कंट्रोलर बन गया मेरा? तो ये हम बहाना नहीं दे सकते हैं कि पता नहीं कैसे हाथ उठा और आपको लग गया. मैं मुख से कुछ अपशब्द बोलती हूं और फिर हम मैं कहूंगी प्लीज डोंट माइंड, आई एम सॉरी. बस सॉरी कह दिया पर मुख से शब्द तो निकल गया. तो निकल गया कैसे? निकला बिना मेरी इजाजत के कैसे निकला? आई एम द कंट्रोलर, कैन आई नॉट कंट्रोल माई वर्ड्स? कैन आई नॉट कंट्रोल माई विजन? कैन आई नॉट कंट्रोल व्हाट आई एम हियरिंग? इसीलिए गांधी जी ने बहुत सुंदर तीन बंदर दिखाए हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल. वो सब पहले हमसे लगते हैं. क्या मैं कितना सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या देखता हूँ, क्योंकि वही असर मन पर होता है फिर उसका. तो मन के अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं वो बाहर से कैसे आते हैं? हमारी देखने सुनने बोलने कर्म करने के आधार पर. पढ़ना, क्या पढ़ते हैं उसके आधार से हमारे इमोशंस बन जाते हैं. तो इसीलिए अगर सेल्फ रियलाइज करना है तो पहली आवश्यकता है सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं. तो जैसे मैंने कहा मैं एक आत्मा हूं, तो फिर प्रश्न उठता मैं कैसी आत्मा हूं, क्योंकि अनेक प्रकार की आत्माएं बताते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, देव आत्मा. तो मैं उनमें से कौन सी आत्मा हूं? मेरी वृत्तियों के आधार पर मैं कौन सी आत्मा हूं ये पता चलता है, हमारी अंदर की वृत्ति, क्योंकि उन्हीं वृत्तियों से फिर व्रत बनता है, मना वातावरण बनता है. तीन प्रकार की वृत्तियां मानी जाती है. एक वृत्ति वो है, एक वृत्ति क्या कहती है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा. ये भी एक वृत्ति है, मेरा तो मेरा है पर तेरा भी मेरा है, तुम्हारा भी मैं छीन लूंगा बाय हुक और बाय क्रुक. इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा. जो तेरा है वो भी मेरा है और मेरी चीज को हाथ मत लगाओ. ये आसुरी वृत्ति है और ये आसुरी वृत्ति माना पाप आत्मा की निशानी. मैं पाप आत्मा बन गई, क्योंकि पाप के किसको कहेंगे, पुण्य किसको कहेंगे, उसको भी समझना होता है. कोई भी विकार वश कर्म, चाहे काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, मानो इतनी सारी पाप की लिस्ट है और उसके अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप के खाते में जाता है और वही मेरा कर्म बन जाता है और वही कर्म मेरे साथ जाएगा, आत्मा के साथ, जिसको हम संस्कार कहते हैं. जब व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं, ये आत्मा अपना कर्म ले गई, जो जीवन में उसने कर्म किए वो आत्मा साथ में ले गई. तो कैसे कर्म किए? और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप धनवान बन जाते हैं, बच्चा पैदा होते ही बहुत सक्सेस मिलती है, कई कई बातें हैं। तो वो बच्चा अपना भाग्य ले आया और फिर उस परिवार में जन्म लिया। तो ये भाग्य और कर्म ये कौन करता है? ये आत्मा कर्म करके अपना वही संस्कार बनाती है, वही भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए जो एक वृत्ति आसुरी वृत्ति है वो है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। फिर दूसरी है साधारण मनुष्य की वृत्ति, साधारण मनुष्य जिसकी ऊंच सोच नहीं है, साधारण सोच है, वो क्या कहेगा? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तुम्हारी चीज तुम रखो, मेरी चीज मैं रखूंगा, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए और तुम मेरा नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हारा नहीं लूंगा। दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है, ये तुम्हारा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, तू मेरे पास नहीं आना, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। भाई भाई में झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी पर, और एक दो के चलो दुश्मन न भी बने लेकिन मैं हो गए बात नहीं कर। सो मेरा, तेरा सो तेरा। पर तीसरी वृत्ति है वो है कि क्या कहेंगे, देवी वृत्ति है, मैं तेरा। ये मेरा तेरा क्या, ये सब हम सब का। वो आत्मा दानी भी होगी, मददगार होगी, सहानुभूति रखेगी, सारे उसमें गुण होंगे। मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, ये अलग क्या है? पहले जमाने में तो ऐसे ही होता था, मेरे घर में चीनी नहीं है, मैं पड़ोसन के पास जाकर लेती थी, उस नहीं है तो मेरे से ले जाती थी। कभी हिसाब नहीं रखते थे कि इतना लिया इतना देना है, नहीं कोई बात नहीं, हम सबका है ये। तो ये सबका है, हम सबका है, ये है ईश्वरीय वृत्ति, या जिसको हम कहेंगे दैवी वृत्ति। अब उनसे भी ऊंची वृत्ति अगर है तो वो कौन सी है? वो ऊंची वृत्ति है न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब उसका। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब उसका। हम इस संसार में आए तो क्या लेकर आए, पता ना, भाग्य केवल लेकर आए, स्थूल चीजें तो कुछ भी नहीं लाए, और जब जाएंगे तो स्थूल चीजें तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब ईश्वर का है। आरती भी सब करते होंगे, कभी मंदिर में तो जाते होंगे और आरती भी करते होंगे। आरती में बहुत सुंदर शब्द है, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाया है कि नहीं, सभी ने गाया है कि नहीं, जरूर गाया होगा। आरती तक ये तन मन धन ईश्वर ये सब तेरा, और जैसे ही बाहर आए ये मेरा चप्पल, मेरा चप्पल, हाँ मेरा 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 यह हो जाता है, तो सब ईश्वर का है, कहाँ गया सब। तो वास्तव में मैं कौन हूं, तो उसमें हम और भी बताते हैं, मैं वो हूं जो भगवान के सामने भी वैसा ही हूं, मैं वो हूं जो इंसान के सामने भी वही हूं, मेरे सामने भी वही हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा में मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, या तो मैं जानता हूं या तो भगवान जानते हैं। तो इसीलिए मैं कौन हूं, दुनिया के आगे तो हम यही दिखाएंगे, मैं तो सेठ हूं, मैं तो साहूकार हूं, मैं तो चलो सर्जन हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, तो वो तो ऑक्यूपेशन है, आप तो नहीं है ना। वो धर्म बताएंगे, मैं हिंदू मैं मुसलमान हूं मैं क्रिश्चियन हूं ये मैं ये हूं, पर वो तो जिस घर में आपने जन्म लिया उसका माता पिता का धर्म आपने अपना लिया। अगर आप कहेंगे मैं इंडियन हूं, इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन हूं, फिर आप नेशनैलिटी भी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन मैं कौन हूं जो सबके लिए समान हूं, सबके लिए समान हूं, भगवान के लिए भी, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि मैं बड़ा हूं, मैं सेठ हूं, मैं होशियार हूं, पर अंदर में मेरी हो सकता है कि थोड़ी हीनता की भावना हो। तो कभी हीनता की भावना आएगी तो कभी सुपीरियरिटी की भावना आएगी, और भगवान के आगे तो कभी सुपीरियरिटी दिखाई नहीं सकते। भगवान के आगे भी आरती में गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, तो भगवान के आगे आरती में आते ना, मैं मूर्ख खल कामी पापी, मैं मूर्ख भी हूँ खल कामी पापी हूँ, पर किसी ने मुझे कह दिया चल पापी कहीं का, तो क्या होता है? भगवान के आगे तो कह दिया मैं पापी हूँ, और मनुष्यों के आगे का अगर किसने कह दिया पापी, तो मुझे पापी कहते हो, क्या समझा है तुमने, मैंने क्या पाप किया है? पर भगवान के आगे तो खुद ही कहते हैं मैं पापी हूं। तो मैं वो हूं जो भगवान के सामने भी हूं, लोगों के सामने भी हूं, और अपने लिए अपने सामने भी हूं। और वो कौन सी आत्मा हूं, मैं कौन हूं, इसको कहते हैं नो दाई सेल्फ। जो आत्मा के सात मूल गुण है वो मैं हूं, माय इननेट क्वालिटीज, वो मैं हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो देह के धर्म है, पर आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है शांति, क्योंकि ये सभी चाहते हैं प्रेम, सभी चाहते हैं, ये नहीं कि एक धर्म वाले चाहते दूसरे धर्म वाले नहीं चाहते, खुशी ये सभी चाहते हैं, आनंद ये सभी चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा के सात मूल गुण हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहला आत्मा का गुण है ज्ञान। ज्ञान सब ज्ञान बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। एक छोटे बच्चे को भी ज्ञान है, छोटा बच्चा सच ही बताता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच बताएगा। ज्ञान है ना, मुझे सच ही बोलना है। माँ बाप शायद सिखा भी दे उनको कि आज ऐसे झूठ बोलो। हम लोग जोक सुनाते हैं कि फोन उठाया, फोन की रिंग बजी, बेटे ने उठाया, तो छोटा बच्चा है तो कहता है पापा आपके लिए फोन है। तो पापा पूछता उनको को आप कौन हो, आप कौन बोल रहे हैं? तो कहा फलाना। तो पापा कहता है उसको बोलो पापा घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है, माना उसको झूठ बोलो ना कि पापा घर में बैठा है और कह रहा है उसको बोलो पापा घर में नहीं है। तो वो सीधा सच क्या बताता, पापा कहते हैं मैं घर में नहीं हूं। उसने तो सच बता दिया। तो ज्ञान ये बच्चे में भी है, परंतु आत्मा का ज्ञान, आज आत्मा स्वयं अपने आप को भूल गई है, इसीलिए कहते हैं नो दाई सेल्फ। और सचमुच देखा जाता है जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना, अंदर में कहते हैं मन खाता है, मन खाता है, आई फील गिल्टी विद इन। क्यों मन खाता है? क्योंकि इट इज अगेंस्ट योर सेल्फ, इट्स अगेंस्ट योर सेल्फ। आप तो वो ऐसी शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, इसलिए आपका मन खाता है। सफेद कपड़े हम पहनते हैं, जरा सा दाग लगेगा तो लगता है ना कि इतना ये दाग क्यों लगा, नहीं तो कोई कहेगा जरा सा तो दाग लगा बाकी तो सफेद है ना, पर ये जरा सा भी दाग क्यों लगा, इतना सफेद है तो हमको मेंटेन करना चाहिए ना सफेद, तो जरा सा दाग भी अच्छा नहीं लगता है। तो वास्तव में जरा सा भी अगर अंदर में खोट है, कुछ है, मन खाता है, इट इज बिकॉज इट्स अगेंस्ट योर सेल्फ। तो इसलिए हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा पवित्र स्वरूप है, उसका बाह्य स्वरूप शुद्धि, वी ऑल लाइक क्लेनलीनेस। तो जैसे शरीर की या बाहर वातावरण की क्लेनलीनेस पसंद है, कहीं जाते हैं या सो क्लीन महिमा गाते हैं, वैसे ही अंदर की भी तो क्लेनलीनेस चाहिए ना, हमारे विचारों की भी क्लेनलीनेस चाहिए। इसी को ही कहते हैं कि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, और जैसे ही थोड़ी अशुद्धि आई बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, मन खाता है कि मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, पवित्र स्वरूप भी है। फिर जहां मन में पवित्रता है उसी से शांति आती है। लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। किसी से हम पूछते हैं आपके जीवन में कोई कमी है, कहते नहीं कमी तो कोई नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, कोई कमी नहीं, बस शांति चाहिए। तो शांति की कमी खटकती है ना, शांति चाहिए, बाकी तो सब है जीवन में। शांति सबकी चाह है और आत्मा का मूल स्वभाव ही शांति है, इसीलिए कहते हैं शांति चाहिए तो अपने अंदर जाओ, आपके अंदर में ही शांति है। तो किसी ने पूछा शांति हमसे कितनी दूर है, तो हम कहते हैं शांति केवल एक सेकंड की दूरी पर है। शांति आपकी सोच में है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप सोचते हैं मैं अशांत हूं, मैं अशांत हूं, मैं अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, भगवान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मैं अशांत हूं। और इसके विपरीत अगर आप मेडिटेशन करके ये अंदर में संकल्प करते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, दिस इज माई गारंटी। बिल्कुल अशांत क्यों हुए, क्योंकि वो आपने, उसने जो कुछ कहा आपने अंदर ले लिया। आप मत लो, कौन कहता है लेना है, कोई किसको जबरदस्ती कुछ भी नहीं दे सकता है। एक छोटे बच्चे को माँ खिलाती है, माँ खिलाती है, बच्चे को खाना नहीं है, तो मुंह में जबरदस्ती भी डाले तो भी थू थू करके बाहर निकाल देगा। चलो डाल भी दे अंदर, पर निगलना तो बच्चे को है, उसको नहीं खाना है, फेंक देगा, मुंह से निकाल देगा। जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शांति मेरे से केवल एक सोच की दूरी पर है बस, और वो सोच है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और शांति आपके पास है जो कोई नहीं छीन सकता आपसे, क्योंकि शांति एक शक्ति है। जितने भी अवगुण हैं वो सब इन गुणों का अभाव है। अशांति कोई चीज नहीं है, क्रोध कोई चीज नहीं है, पर क्रोध क्यों है, क्योंकि शांति का अभाव है। जैसे अंधकार कोई चीज नहीं है, अंधकार की डेफिनेशन हम क्या देंगे, प्रकाश का अभाव। प्रकाश का अभाव है तो अंधकार है, लेकिन अंधकार क्या डेफिनेशन ये नहीं देंगे कि प्रकाश, अंधकार का डेफिनेशन ये नहीं देंगे, सॉरी, प्रकाश और अंधकार के बीच में अगर हम इसको डेफिनेशन दें तो प्रकाश का डेफिनेशन ये नहीं देंगे कि अंधकार का अभाव, नहीं, क्योंकि प्रकाश का कोई सोर्स है और उस सोर्स से वो प्रकाश आ रहा है। तो इसीलिए अंधकार माना प्रकाश नहीं, पर प्रकाश माना अंधकार नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। प्रकाश को क्या कहेंगे, सूरज की किरणें, किरण वो प्रकाश है, बिकॉज इट हैज अ सोर्स। तो इसीलिए जब हम सोर्स को समझते हैं तो उसका अनुभव भी करते हैं कि आत्मा का स्वयं का स्वभाव ही शांति है। शांति मुझे कहीं बाहर से नहीं लेनी है, शांति जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, पानी पानी को ठंडक बाहर से नहीं लेनी है, पानी का अपना निजी स्वभाव है, चाहे हम उसको कितना भी गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो अग्नि उसमें प्रवेश होगी तो गर्म हो जाएगा, पर फिर स्टोव से गैस से हटा दो अपने आप फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो हर चीज अपने ओरिजिनल सोर्स तक जाती है। जब कोई मरता है तो क्या कहेंगे, शरीर के लिए तो कहेंगे भी उनका अंतिम संस्कार करते हैं, पांच ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, पांच तत्वों में विलीन हो गया, जो चीज जहां से आई है वहीं विलीन हो गई। पर आत्मा के लिए क्या कहेंगे, भगवान के पास गए, क्योंकि भगवान के पास से आई है, तो जो चीज जहां से आई है वहीं उनको जाना है। शरीर का संबंध प्रकृति से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसीलिए हम परमात्मा से शांति मांगते हैं। लेकिन परमात्मा से शांति का अनुभव क्यों नहीं होता है, इसके दो कारण हैं। एक तो खुद को नहीं जानते, दूसरा परमात्मा को भी नहीं जानते, और मन इतना, तीसरा कारण भी है कि मन इतना मैला हो चुका है, जो उस मन में शांति घर कर ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जैसे हम ये चिंतन करते जाते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस आती जाती है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम भी सिखाया नहीं जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता है, हाँ मुझे प्यार करो, अगर हम किसको कहते हैं प्यार करो, कैसे प्यार करेगा, चलो गले लगाएगा, चुंबन करेगा, हाँ चलो जो भी है प्यार करो, मुझे कोई प्यार नहीं देता है, ये भी एक अज्ञान है, मुझे कोई प्यार नहीं देता, प्यार नहीं करता। आप कितना करते हो, लव बिगेट्स लव, आप कितना प्यार देते हो जो आपको प्यार मिले। तो प्यार मांगने की भी चीज नहीं है, कोई भी गुण मांगने की चीज नहीं है, आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है। पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले वो ही पंडित होए। तो ढाई अक्षर प्रेम का कोई लिखना नहीं है अल्फाबेट पर मे, लेकिन ये आत्मा का मूल गुण है। और फिर प्रेम के बाद आता है सुख, जिसको हम आत्मिक सुख कहते हैं। एक होता है इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख मिलता, अरे वाह क्या मजा आ गया आज ये चटपटा खा लिया, वो तो जीभ का सुख है, एक फिल्म कोई म्यूजिक सुन लिया वाह मजा आ गया, कई कहते आनंद आ गया। आनंद भी कोई इंद्रियों का आनंद, कोई सच्चा आनंद नहीं है, सच्चा आनंद तो आत्मा का आनंद होता है। सुख का चरम स्वरूप है आनंद, लेकिन आज आनंद को भी इंद्रियों से जोड़ दिया है। तो सच्चा सुख जो आत्मिक सुख है वो किसमें मिलेगा, पवित्र विचारों में, आंतरिक शांति में, स्वच्छ दृष्टि में, इससे हमको वो प्रेम का अनुभव होता है। सबके लिए प्रेम, क्योंकि सब आत्मा ही है, एक परमात्मा की संतान है, इसलिए भारत की ये संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का बहुत सुंदर अर्थ है, और ये भारत की संस्कृति को हम पहचानते हैं, सारी दुनिया हमारा परिवार है। तो ये आत्मिक सुख आत्मा अनुभव करती है जब उसकी दृष्टि वृत्ति आत्मिक बन जाती है। सबको आत्मा देखना, भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा, एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। और जहां यह आत्मिक सुख है वहीं आनंद है। आप देखेंगे जितने भी संत महात्माएं हैं उन सबके जो नाम होते हैं ना संतों का, जब वो संत बनते हैं सारा सन्यासी बन जाते हैं तो उनके जो नाम होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। सत्चित्तानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, आनंद शब्द कम्स एट द एंड, प्रेमानंद, शांतानंद, विवेकानंद, ज्ञानानंद, आनंद। सो आनंद इज द चरम, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दीज वैल्यूज, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद। और वो ही आनंद ही एक शक्ति है। इसीलिए हर आत्मा वास्तव में शक्ति स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं विल पावर। विल पावर आपके पास है, यू ओनली नीड सम डिटर्मिनेशन, दैट्स ऑल। विल पावर आती है। तो आत्मा अपने असली रूप में बहुत शक्ति है। और ये जब हम सोचते हैं ना तो सचमुच हम महसूस करते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर कितनी शक्ति, जिसको ये हम माइंड पावर कहते हैं, क्योंकि मन आत्मा की शक्ति है, बुद्धि आत्मा की शक्ति है, जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। तो इंटेलेक्ट, बुद्धि, अच्छा बुरा का निर्णय करना, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण बताए हैं गीता में। अर्जुन ने भगवान से पूछा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या बताए, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सब में जो समान रह सके, तटस्थ रह सके। ऐसे नहीं मान मिला तो बड़े खुश हो गए और अपमान हुआ तो दुखी हो गए, और बहुत खुश हो गए मान मिला तो जैसे बलून की तरह हवा फूंकी बलून में तो कितना सुंदर दिखेगा, पर जरा सी सुई लगाई वो सारी हवा निकल गई, अपमान जरा सा हुआ तो शक्ति खत्म हो गई। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर मान मिला तो उसके अंदर में क्या आएगा, ये तो भगवान की देन है, ये जो टैलेंट है आपके अंदर, पढ़ाई तो आपने की, लेकिन अगर इसको ईश्वर की अमानत समझेंगे तो आप बिल्कुल निर्अभिमानी होकर के, निर्माण होकर के, नम्र होकर के सेवा करेंगे। अगर ये कहेंगे मैं टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन कई बार वो होशियारी काम नहीं आती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी होशियार हो सकता है, क्योंकि उसके पास विजडम है, हमारे पास तो केवल किताबों का ज्ञान है। तो इसीलिए विल पावर कम्स फ्रॉम विद इन, और वो शक्ति इन गुणों से आती है। अगर जीवन में गुण नहीं है ना तो सचमुच विल पावर भी नहीं आएगी, बिकॉज इट्स अगेंस्ट योर सेल्फ। जो मेरी अगेंस्ट है तो उसमें शक्ति कहां से आएगी। तो या तो मैं अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानूं, अपने मूल्यों को पहचानूं, और फिर परमात्मा से मैं प्राप्त करूं। हम तीन बार ओम शांति क्यों कहते हैं, शांति पाठ में भी ओम शांति 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 तीन बार कहा जाता है। तो तीन बार शांति कहने का मतलब क्या है, ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और म। इंग्लिश में लिखेंगे ए यू एम, अ उ म, दैट इज मी, ओम। सो सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ओम इज दैट इज मी, एंड व्हाट इज इट, दैट इज मी, शांति। मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। और जैसे मैंने ये अनुभव किया मैं आत्मा शांत हूं, शांत स्वरूप हूं, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता है। वो विल पावर है मेरे अंदर जो शांति में मैं रह सकूं, चाहे कोई गुस्सा करे, डांटे, गाली दे, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। आई डोंट हैव टू टेक, तो इसीलिए वास्तव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर उस शांति को कायम रखने के लिए परमात्मा से शांति की शक्ति लेनी होती है, जिसको यह मेडिटेशन कहते हैं। तो हम राजयोग किसको कहते हैं? अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, इसको हम राजयोग कहते हैं। तो क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है, और उस शांति के सागर से आत्मा का जो संबंध हो जाता है, उस संबंध से शांति की अनुभूति पक्की हो जाती है। जैसे हमारे मोबाइल को हम यूज करते हैं तो बैटरी कम होती जाती है, फिर चार्जर से हम चार्ज करते हैं, पावर हाउस से कनेक्शन लेते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो चार्जर का काम करता है हमारा राजयोग। तो इसलिए परमात्मा शांति का सागर है, तो मैं आत्मा उसकी संतान शांत स्वरूप हूं। और जैसे मैंने ये सोचा, शांति का अनुभव होने लगता है। फिर तीसरी बार शांति, उसका मतलब क्या है कि जिस धाम से मैं आत्मा आई हूं, वो धाम भी शांति का धाम है। ये संसार मेरा धाम नहीं है, मेरा ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, हम यही कहते हैं ना, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम दो दिन के मेहमान हैं, भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। तो आत्मा उस भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाएगी। शरीर भगवान के घर से नहीं आया है, वो मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। तो मैं आत्मा उस धाम की वासी हूं जो शांति का धाम है। तो शांति शांति मांगने की बजाय शांत स्वरूप निश्चय कर शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं ये अनुभव कर शांति धाम में पहुंच जाओ, जो पांच तत्वों से पार एक शांति का धाम है, जिसको हम अखंड ज्योति का महतत्व कहते हैं, ब्रह्म महतत्व कहते हैं, जहां सूर्य चंद्रमा सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, जिसको गीता में कहा है। गीता में वो बहुत सुंदर महावाक्य है कि जहां सूर्य चंद्रमा सितारों के प्रकाश से भी परे मेरा परम धाम है। वो परमात्मा का धाम, वो आत्माओं का भी धाम है। हम भी उसी घर के वासी है, वही हमारी एड्रेस है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी एड्रेस तो माता पिता के घर की होती है ना, वही एड्रेस होती है जो माँ बाप की एड्रेस है। तो हमारा वही घर है जो हमारे पिता का घर है। हम एक ही धाम के वासी हैं, एक जैसे ही गुण हैं, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं। आत्मा अंश है, अंश का मतलब कोई टुकड़ा नहीं। अब ये रुमाल है, इसका एक धागा निकाला तो चलो इसका टुकड़ा हो गया, पर धागा निकलते निकलते इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के अंश माना, परमात्मा के जो गुण है आत्मा के भी वही गुण है, लेकिन अंश में। वो शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, मैं अशांत स्वरूप नहीं हूं। वो प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं नफरत स्वरूप नहीं हूं। वो सुख का सागर है तो मैं सुख स्वरूप हूं, दुख स्वरूप नहीं हूं। वो सर्वशक्तिमान है तो मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शक्तिहीन नहीं हूं। तो जब ये संकल्प हम करते हैं और उस धाम का मैं वासी हूं, मन बुद्धि सहज ट्रैवल करती है उस धाम में एक सेकंड में, इस देह से परे। तो पहले एक इनवर्ड जर्नी है, फिर अपवर्ड जर्नी है, फिर आउटवर्ड जर्नी है। ये है मेडिटेशन। इनवर्ड जर्नी माना पहले खुद को देखो, बी अवेयर ऑफ योर ट्रू सेल्फ। फिर उसको संयमित रखने के लिए मास्टर बनो, मैं इंद्रियों का मालिक हूं, मैं मन का भी मालिक हूं, मैं मन में जो सोचना चाहूं वही सोचूं, ये नहीं कि जो बात नहीं सोचना चाहता हूँ वो मन में सोच चलते रहते हैं। अगर वो चलते हैं तो मन का भी मालिक कहाँ हुआ? तो कई मन को दमन करते हैं, कुछ भी नहीं सोचना। हम कहते हैं मन को आप दमन नहीं कर सकते हो। मन तो चंचल माना जाता है, तो चंचल बच्चे को आप दमन करेंगे उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। उसको बांध के बिठाएंगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बच्चे को काम दो, तो यहां भी हम मन को काम देते हैं। अपने आप पे सोचो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं जगत में, मेहमान बन के आया हूं, एक्टर बन के आया हूं, किसने भेजा मुझे इस दुनिया में? कहेंगे भगवान ने भेजा। क्यों भेजा? अच्छे से अच्छा रोल बजाने के लिए। आपको बताए ना, आइडेंटिटी और रोल में कितना अंतर है। तो आइडेंटिटी मेरी वही है जो भगवान के सामने भी है, मेरे अंदर मेरे सामने भी है और दुनिया के आगे भी हो, कि मैं वही ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। भगवान के आगे भी मेरी वही आइडेंटिटी है। और जो रोल बजा रहे हैं ये तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। आज हम पोस्ट पर हैं, कल रिटायर्ड हो जाएंगे तो लिखना पड़ेगा रिटायर्ड। तो इसीलिए भगवान ने हमें क्यों भेजा, कि जो मेरा रोल है वो अच्छे से अच्छा बजाऊं, ताकि अगर मैं संसार से जाऊं तो एक वॉइड क्रिएट करके जाऊं कि ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि गुड रिडेंस टू बैड रविश, अच्छा हुआ मर गया अच्छा हुआ मर गया, बहुत तंग किया था इसने हमें, बहुत दुख दिया था हमें, तो अच्छे से अच्छा रोल बजाऊं। लेट मी बी अ वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड डॉक्टर। तो जो भी रोल है वो अच्छे से अच्छा बजाऊं, ताकि ये कहे सब वंस मोर। तो वो अच्छा रोल बजाऊं जो भगवान भी खुश हो जाए अपने बच्चे को देख कर कि मैंने अपने बच्चे को भेजा। और अंदर में ये लक्ष्य हो कि मैं जो भी करूं उससे हम परमात्मा का नाम रोशन करें, क्योंकि भगवान ने हमको इस सृष्टि पर भेजा है, तो उसने भेजा है, मैं उसका नाम कितना रोशन कर रहा हूं। वैसे भी कई बच्चे सोचते मैं अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हूं, करूं, कुछ अच्छा उनको अवार्ड मिलता है, कुछ उनकी फेलिसिटेशंस होती है, तो कहेंगे आई नाउ गिव दिस टू माय फादर, द वन हु मेड मी लाइक दैट। तो पिता को अर्पित करते हैं, माँ को अर्पित करते हैं, तो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं। अगर कोई सफलता मिली तो ये नहीं सोचो मैंने किया, अब ये सोचो परमात्मा ने मुझसे कराया, वो सफलता का भी अभिमान नहीं आएगा। और अगर असफलता भी मिली तो दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से प्रयास किया, आगे तो उसका भी तो कर्मों का हिसाब किताब है। ये ना हो कि डॉक्टर की कमी, डॉक्टर की भूल थी, डॉक्टर की भूल के कारण ये हुआ, ऑपरेशन करते हैं कैंची अंदर ही पेट में रह जाती है, ये फलानी चीज पेट में रह गई, कैसे रह गई, कैसे नहीं ध्यान दिया। तो इसीलिए डॉक्टर की भूल ना निकले, डॉक्टर सबसे अच्छे से अच्छा करे, बाकी तो उसकी तकदीर है, क्या कर सकता है, यू कैन ओनली ट्रीट नॉट क्योर। तो इसीलिए परमात्मा हमें यही कहते हैं कि वो सेल्फ को रियलाइज करने लिए फिर सेल्फ को संयम भी रखना है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। कोई भी कर्म करना है पहले सोचो, और सोचने से पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। कैन आई गो दैट फार? तो पहले सोचो, फिर समझो, समझो माना डिसाइड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, फिर समझ करके फिर कर्म करो, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे नहीं कि सोचे समझे बिना कर लिया और फिर पता चला ये तो गलत था, ये तो गलत था, समझ तो लिया गलत था, फिर सोचते अभी क्या करें, इसकी नौबत ही क्यों आई, पहले ही क्यों नहीं सोचते हो। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो स्वयं का संयम बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो अपनी इंद्रियों के राजा बनो। राजयोग हमें यही सिखाता है, इंद्रियों के राजा बनो, फिर मन के भी राजा बनो। मैं जो सोचना चाहूं वही सोचूं, यह है सेल्फ रियलाइजेशन। नहीं सोचना है नहीं सोचूं, एक सेकंड में ब्रेक लगा दूं, नहीं नॉट, जैसे गाड़ी में ब्रेक पावर ब्रेक होती है, एक सेकंड उसी समय ब्रेक लग जाती है, नहीं माना नहीं। और फिर मैं करूं, ऐसे तुरंत नहीं करूं। इसलिए जब सोच समझ कर कर्म करते हैं, इसको कहते हैं विल पावर, और यही है सेल्फ रियलाइजेशन। तो राजयोग मेडिटेशन में पहले हम इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर मन के राजा बनते हैं, और जब मन के राजा बने, सोच समझ करके हम करते हैं, तो फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो सही कर्म करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, और वही एक्यूरेट कर्म करने से सबका हम प्यार पा सकेंगे, सबकी दुआएं पा सकेंगे। सबसे मानो वो उम्मीद हमारे हमारी उनके अंदर जग जाएगी, तो हम सबका दिल भी जीत सकेंगे। और जब सबका दिल जीत सके, मानो आपने विश्व को भी जीत लिया। कोई भी व्यक्ति बाहुबल से, लड़ाई के बल से, हिंसा के बल से कुछ भी जीत नहीं सकता है, पर प्यार से सबको जीत सकता है। अब यही हमें राजयोग सिखाता है, इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। तो अभी हम एक दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे, समय हो गया है। अब जो आपने सुना उसी को आप अनुभव करें, इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले खुद को बदलो तो जहान बदल जाएगा। ओम शांति। तो अभी 3 मिनट वही सोचें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, एंड देन सेल्फ रियलाइजेशन। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांति धाम का वासी, शांत स्वरूप, महसूस कीजिए शांति की शक्ति अपने में। मन शांत है, इंद्रियां शीतल है, मुझ आत्मा ने अपने आप को पहचान लिया है। मुझ आत्मा का तीसरा नेत्र खुल चुका है। रॉन्ग राइट की जजमेंट आ गई है। अब मैं वही करूंगा जो अंतर आत्मा की आवाज है, क्योंकि मैं वही हूं, एक शुद्ध आत्मा। प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, अब इसी शक्ति से अपने आप को भरपूर करते इसी शक्ति को समा कर फिर वापिस कर्म क्षेत्र पर कर्म करें, उसी शांति की स्थिति में। तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा, कुशल होगा, सुखदायी होगा और आप सदा स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। ईश्वर से प्रेम बढ़ जाएगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। शांति।